और दूसरे हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। आप जिंदा लोगों से दुआ करा सकते हैं, अल्लाह उनकी कबूल करे ना करे, लेकिन कोई दूसरा दुआ कर सकता है। उम्रे पे, हज पे लोग जाते हैं, आप कह सकते हैं कि आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें। इसी तरह नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद एक दफा कहत पड़ा, तो हजरत उमर का गालिबन दौर था, तब जब दुआ करनी थी तो हजरत अब्बास जिंदा थे जो आपके चचा थे, या हजरत इब्ने अब्बास थे गालिबन, तो उस वक्त उन्होंने फिर दुआ किया था कि अल्लाह तेरे नबी के चचा की वजह से हमें इस बारिश दे दे। आप समझिए कि ये वसीला मांगा उन्होंने तो जायज था, हालांकि मदीना में अल्लाह के नबी की कब्र भी थी। उन्होंने जाके ये नहीं कहा कि नबी के वसीले से, तो कुछ नाजायज वसीले देख ले जो लोग अमूमन करते हैं, और वो कौन से, यानी ये तो वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी इजाजत है, लेकिन कौन से वसीले ऐसे हैं कि जो हम नहीं कर सकते, जिसको करने से फिर शिर्क आता है। तो नंबर एक, औलिया अल्लाह और नेक लोगों से फरियादें करना, ये गुमान कर लेना कि ये नेक लोग हमें बचवा सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जैसे आप लोग कहेंगे अब्दुल कादर जिलानी के वसीले से अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, और अल्लाह ताला गंज बख्श के वास्ते से हमें बख्शते हैं, ये शरीयत के अंदर हराम है। किसी इंसान को आप कितना भी नेक समझें, आपको नहीं पता कि अल्लाह उसकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सहाबा ने कभी ये नहीं कहा था कि अल्लाह तेरे नबी के वसीले से हम दुआ करते हैं। देखिए मैंने आपको जितने वसीले लिखाए हैं, 8-10 तो आपने नोट कर ही लिए होंगे ना, कहीं आपको ये नहीं लिखाया कि नबी के नाम का वसीला बना। सहाबा जो थे वो आते थे, गुनाहों की बातें भी होती थी, नेकियों की भी, ये कभी नहीं कहा अल्लाह तेरे नबी के वसीले से हमें बख्श दे। इतनी जंगें लगी, इतने आपके ऊपर कठिन मरहले आए, लेकिन आपने किसी जगह भी ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, तो किसी वली या नेक शख्स, किसी लीडर को, किसी इमाम को, किसी भी आपकी नजर में बड़े नेक और पहुंचे हुए शख्स को बीच में लाना, ये बिल्कुल जायज नहीं होगा। फिर इसी तरह गैर अल्लाह के लिए नजरो न्याज करना, नजर मानते हैं लोग, अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं फलां बुजुर्ग है उनकी कब्र पे जाके चावलों की देख दूंगी, या मैं फलां जगह जाके खीर बांटूंगी, ये नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी चीज है कब्रों पर जानवरों को जिबा करना। बाद लोग कहते हैं ये काम हो गया ना तो सिंध में जाके फलां कब्र के ऊपर जाके बकरा जिबा करूंगी, ये दुरुस्त नहीं है, ये तो एक किस्म का अल्लाह को फोर्स कर रहे हैं ना। फिर इसी तरह किसी के हक का वसीला लेना, मसलन आप देखिए कि ये कहना कि अल्लाह तेरे नबी और तेरे रसूल के हक के वसीले से मैं दुआ मांगता हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह और भी है, किसी के जाहो मर्तबे का वसीला, यानी आप कह लीजिए कि वसीले को मिस यूज नहीं करना। अगर आप सारी बातों को बिल्कुल आप छोटे से लेवल पे ले आए, यानी जो मैंने कहा है ना, ये मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बातें की है ना, अब आप इसको अपनी अमली जिंदगी में लाए, और आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि ये मौजू हमारे कल्चर में बहुत आम है। कुछ लोगों ने इसी वजह से अपने आप को दूसरों से अलग कर दिया और दूसरों को इधर से उधर कर दिया। खुलासा क्या है, हर बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक होना चाहिए, गहरा ताल्लुक। जितना ईमान पुख्ता होगा आप अल्लाह को दिखा सकते हैं। आप इसको ऐसे ले जैसे आप और आपका बच्चा, माँ बच्चा, सीधी सी बात है, माँ से बच्चा जिस लाड और प्यार से मांग सकता है, क्या माँ की दोस्त से मांग सकता है? नहीं मांग सकता ना, क्योंकि माँ आपकी माँ है। तो अब आप लीजिए अपने ऊपर, अल्लाह से आप जिस लाड और प्यार से मांग सकती हैं, क्या आप किसी और के से मांग सकती हैं? बीवी और शोहर को ले लीजिए, जिस मान और धड़ल्ले से बीवी शोहर से पैसे मांग सकती है, क्या उसके दोस्त से मांग सकती है? और अक्सर मियां बीवी की लड़ाई कहते हैं पैसों पे होती है, फिर भी बीवियां शोहर से मांगती हैं ना, क्योंकि आपका अपना ताल्लुक है। वसीले के लिए ताल्लुक बड़ा जरूरी है। कौन नहीं मांगता जब नाराजगी होती है, मतलब शोहर बीवी से नाराज हो ना तो बच्चों से कहेंगे अम्मी से को ये ले दो, खुद नहीं मांगेंगे, अम्मी से को किधर है, और बीवी खाना पका के टेबल पर रख के बच्चों से कहेगी अब्बू से को खाना खा ले, ताल्लुक कमजोर है ना। और जब अपना ताल्लुक बहुत अच्छा होता है तो फिर खुद डायरेक्ट कहते हैं आइए खाना खाइए। तो असल बात जो मुझे लगता है कि हमारी अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट डायलिंग नहीं है। जितना ज्यादा अल्लाह के साथ मेरा और आपका गहरा ताल्लुक होगा ना, उतना इंशाल्लाह फायदा होगा, उतना हम अल्लाह ताला की बात मानेंगे, और जितना अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे मान होगा। मुझे वसीला ऐसे लगता है मान मेरा अल्लाह, मैं ले लूंगी, आपको क्या, मैं क्या आपसे मांगू। जैसे मुझे किसी की बात याद आ गई, अल्लाह ताला ने तौहीद दी भी थी, पुख्ता थे, लेकिन याद रखिए जिंदगी में जरूर कुछ मरहले ऐसे आते हैं कि जब अल्लाह ताला आपकी आजमाइश करता है, तो मवाहिद थे वो। अब हुआ क्या कि कोई एक झूठा मुकदमा उनके ऊपर पड़ गया, किसी ने किसी भी तरह से जो उनकी फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया, नाहक किया। अब क्या हुआ, जो कोशिशें हो सकती हैं आपको पता है हुई होंगी, कोशिश भी की, सब किया। कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आपको तो शहर में वो बड़ी दरगाह, उधर चले, बस जाके वहां बाबा जी के पास खड़े हो जाए और मांगे, फिर देखे फैक्ट्री कैसे मिलती है। तो उनके जो अल्फाज मेरे जहन में वो यही है कि अगर फलां बाबा जी से फैक्ट्री मिलनी है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से चाहिए। और 2 3 4 महीने की एफर्ट जितनी भी थी अल्लाह ने वापस दिला दी। हक तो हक ही होता है ना। ये जुमला के अगर दूसरे से लेना है ना तो मैंने कोई नहीं लेना, आपने बच्चों में ये आदत देखी होगी, कभी कभी माँ कोई चीज ना दे ना तो कोई दूसरा देना चाहे तो वो रो के फेंकते, कहते अम्मी से ही लेनी है। अल्लाह हमसे भी यही चाहता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं क्यों बीच में आपको लाऊं, आप कौन है? आप कहते हैं नहीं ये बड़े नेक है, तो होते रहे, जरूरी तो नहीं कि अल्लाह हर नेक की सुने। पिछली नशीस में हमने इस पे बात की थी, अल्लाह ताला ने नबियों की नहीं सुनी, हजरत सुलेमान की नहीं सुनी, वो मांगते रहे औलाद वारिस आ जाए, एक हैंडीकैप बच्चा सिर्फ पैदा हुआ, और सुनने पे अल्लाह आए तो इबलीस की सुन ली, रब्बी फानजिर नीला यौमी योबा सुन मान ली, फिरौन की सुन ली। हाँ तो अल्लाह को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि जैस और नो, दो दोस्त हैं उसको इमेजिनेशन में लाए, मान हो जाता ना। आपको पता था कि इसको रात को 10 बजे भी फोन करूंगी ना ये आ जाएगी। और कुछ ऐसी दोस्ती के मेयार भी होते हैं, कुछ से आप पहले फोन करने से पहले टाइम देखते हैं, पता नहीं नहीं इस वक्त नहीं करती, पता नहीं क्या होगा, होता कि नहीं। एक है अवेलेबिलिटी, कौन रात दिन जो कि खैरियत है, मैं भी आई डोंट वरी, आप कहते भी रहे कि वो आ जाएगी। अब उस दोस्त के साथ जो आपका ताल्लुक होगा क्या वो पहली वाली से होगा? कभी मजबूरी पड़ गई, मुश्किल पड़ी तो किसको बुलाएंगे, पहली को कि दूसरी को? दूसरी को पुकारेंगे ना। अब आप अल्लाह के साथ ले, अम्मा युजीबुल मुस्तर इजादा, कौन है जो मुस्तर और दुखी की दुआ सुने? आप 20वें पारे का पहला रुकू पूरा पढ़े, अल्लाह अम्मा ही से पूछते हैं कोई है जो यब्दुल खल्क सुम्मा युईदु, है जो तुम्हारे दुखों को सुने तुम्हारी तकलीफों को सुने, कौन है? मन इलाहुन गैरुल्लाह, खुद ही कहता अल्लाह। तो जब अल्लाह के साथ इतना गहरा ताल्लुक तो मैं किसी से क्यों पूछूं? वैजा साला कई बात यन्नी फनी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दे मैं बहुत करीब हूं। उजी वो दावत दाई जादानी, मैं तो बंदे की दावत उसकी दुआ को सुनता हूं जब भी वो पुकारता है, शर्त एक है यू मिनो भी कुछ पर ईमान लिया है, यानी जब बंदा अल्लाह पर ईमान रखते हुए उसको पुकारता है कि मेरी अल्लाह ने ही सुननी है, तो फिर आप देखिए कि कौन ना उसको पुकारे। नक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, किसी ने भी आपकी मदद करनी हो ना जो आपसे प्यार करता है, आपकी माँ पाकिस्तान में है 100% वो आपकी हेल्प करना चाहती है पर वो है ही नहीं, तो आप किसी फिजिकल हेल्प के लिए उनको बुलाते हैं, कम से कम उनको 24 घंटे तो चाहिए ना पाकिस्तान से लंदन आने में, और अल्लाह को पुकारेंगे तो फैनी करीब, तो करीब वाले को छोड़ के दूर वाले को पुकारे। कभी अपने किसी बीवी को ये कहते हैं सुना है अपने मियाँ के दोस्त से के आप भाईजान जरा मुझे अपने मियाँ से कुछ पैसे ले दें, मेरा अल्लाह मियाँ जो है ना देने थे वो भी नहीं देगा, कहेगा मेरी बेइज्जती करती, और आप घर में आए और आपकी दोस्त बैठी और आपका बच्चा आए और के आंटी अम्मी से के मुझे 1 पाउंड तो दे दें, कभी भी नहीं देती, मुझे सच बताएं आपको कैसा लगेगा? चलिए दोस्त के सामने पूछ लें, आप कहेंगे कि कितने नाहल बच्चे हैं, कितना बेइज्जती करवाते हैं, आपके बच्चे किसी ऐसी सिस्टर के सामने आपको पूछ रहे हैं जो हर वक्त आपके माशाल्लाह हैबिट टटोलती रहती हैं, फिर क्या होगा? दूसरों से दुआ करने को कहना या उनसे कराना, इसकी क्या रियलिटी है? देखिए अभी आपको मैंने एक हदीस के तहत बता दिया कि जब कोई मुसलमान किसी गायब मुसलमान के लिए दुआ करता है तो वो दुआ इंसान को लगती है, बल्कि हदीस में आता है कि फरिश्ते फिर उस दुआ करने वाले के लिए दुआ करते हैं, उसको खुद फायदा हो रहा है, वो अपने गुनाहगार मुंह से आपके लिए दुआ कर रहा है और बेगुनाह फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये तो पसंदीदा अमल है। किसी भी इंसान का दूसरे के लिए दुआ करना, खुद से करना आहसन अमल है। अब दूसरा इशू इसका क्या है कि आप दूसरों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, दो में दुआ करना जरूर करना, मैंने कह दिया, और बाज तो यकीन कर इतना थ्रेट करते हैं ना कि बंदा कहता है मैं करूं, हाय ये तो परेशानी हो जाएगी, मुझे कोई कहे ना आमतौर पे कोई कहे तो मैं फौरन से फौरन कर देती हूँ, मैंने आपके सामने ही दुआ कर दी है ताकि मैं बाद में भूल गई तो क्यामत के दिन जवाब देना हो। आप भी मुझे कहेंगे ना कि अगर दुआ करें हमारे लिए तो मैं फौरन करूंगी, आपके सामने ही कर दूंगी जितना भी मौका होगा, बाद में भी अल्लाह के मुंह पे ले आए तो ले, लेकिन मैं अपने ऊपर बोझ नहीं रख सकती। बाद लोग जी जी जरूर जरूर जी जी जरूर, बाद में याद भी नहीं रखेंगे। लेकिन होता क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसमें एक साइकोलॉजिकल चीज है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ एक मिसाल के साथ। आप देखिए, एक शख्स है, उसने रात को कच्चे चने खा लिए या कोई अच्छी हैवी ज्यादा खाना खा लिया, हैवी मील ले लिया, फिर सो गया। सुबह उठा, पेट में शदीद दर्द है, उठा तो किसी हकीम साहब के पास गया। अब हकीम साहब को कहता है पेट में बड़ी शदीद दर्द है। अच्छा, अब हकीम साहब पूछते हैं क्या खाया था, ये नहीं बताता, कितना खाया था ये भी नहीं बताता। अब होगा क्या कि हकीम साहब अगर उसका इलाज करते हैं तो उनको पता ही नहीं कि वजह क्या, ओवर ईटिंग है, कोई खाना सख्त खा लिया है, मिर्चें खा ली हैं, कोई ना कोई वजह ना। अब हकीम साहब जब उसका इलाज करेंगे, हो सकता है ठीक दवा दे दें, हो सकता है ठीक दवा ना दे। उनको क्या चाहिए था आदमी को, कि पहले आते ही बता दे कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए, मेरा ख्याल है मैं बीमार हुआ कि मैं खाना खाते ही सो गया, रीजन बता दे, तो हकीम साहब उसका इलाज आसानी से कर लेंगे ना। अब इस मिसाल को एक साइड पे रखें, कोई सिस्टर, आपकी फ्रेंड, दोस्त, जो भी अपने लोग होते हैं, वो आपके पास आते हैं और कोई अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम शेयर करती है। प्रॉब्लम एक तो होता है कि वो बैठ के पहले आपको सारा अपना प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, जो उन पे तकलीफ आई है। लेकिन वो आपसे कोई ऐसा मैटर नहीं बताती कि कभी उन्होंने भी किसी के साथ कोई ज्यादती की होगी। मसलन आप देखिए, अब आपकी बहू आई, शादी करके आप लाए, आप बड़े लाड और उसके प्यार देखते हैं, आप कहते हैं मैं बहुत सीरियस हूँ, बहुत सिंसियर हूँ, मैं इसके साथ अच्छी रहूंगी, लेकिन बहू का मूड ही नहीं अच्छा हुआ, वो आपकी इज्जत नहीं करती वो नहीं। अब आप बैठे हुए क्या सोचते हैं, मैं तो इसके साथ बहुत मुखलिस हूँ, अल्लाह की कसम मैं तो इसको बेटी समझती हूँ, दिस दिस दिस, ये मेरे से बुरी क्यों है। लेकिन आप ये भूल गए कि आज से 20 साल पहले जब आप सास के पास बहू बनकर आए थे, तो आपने अपनी सास के साथ कुछ मामला गड़बड़ किया था, आपने अपने मियाँ से कहा था कि मुझे इनसे अलग कर दो, मैंने इनके साथ नहीं रहना। आज आपकी बहू कह रही है मुझे आपके साथ नहीं रहना, फिर आप रोते हैं धोते हैं, लोगों को कहते देखो क्या कमी है, मैं इसको पिका के खिलाती हूँ। वो आज आपकी बहू क्यों रिवेलियस हुई, आप सिर्फ अपने मौजूदा उसके साथ टर्म्स को वेस्ट कर रहे हैं, और वाकई आप संजीदा हैं, आप अपनी बहू को खुश रखते हैं, लेकिन असल में बहू का रिबेलियस होना पीछे 20 साल पीछे चला गया, जब आप आए थे और आपने अपने मियाँ को फोर्स करके अपनी सास से अलहदगी ले ली थी। अल्लाह ने वो गुना आपके दामन के लिए रखा हुआ था, पेंडिंग था आपका, वो क्रेडिट था या डेबिट था जो भी कह ले, आज अल्लाह ने उसको आपके नाम पे डालकर आपकी बहू के जरिए से पूरा करवा दिया। जब हम दूसरों को कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करो, तो एक असूल याद रखिए, कुरान ने क्या कहा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत भी पहुंचती है तुम्हारे अपने किसी गुनाह की सजा होती है। जब हम दूसरों को कहते हैं ना दुआ करो और साथ अपना गुनाह नहीं बताते, तो वही बात है, हकीम साहब को वजह बताए बगैर उनसे इलाज कराना, चलिए ये भी ठीक हो गया। आपने किसी से कहा या किसी ने आपको कहा दुआ करो, उसने जाके अल्लाह से दुआ कर दी, हरम में गया, इधर गया, जिधर, अल्लाह इसकी सेहत दे, इसको ये इसकी तकलीफ दूर कर दे, ये कर दिया। अब फरिश्ते उस दुआ के साथ क्या मैटर करते हैं उसको समझिए, अल्लाह ताला ये बंदा घंटे से उस गैर फलां के लिए दुआ कर रहा है, क्या करें। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा तुम ऐसा करो कि इसने उसके लिए दुआ की है ना, इसको इसका अजर दे दो, यानी फरिश्ते इसके लिए दुआ कर दें, या इसको नेकी समझ के खुश हो जाओ, इसको तो फारिग करो। अब अल्लाह ताला जिस बंदे के लिए दुआ होती है ना, उसकी तरफ रुजू करते हैं, जो फरिश्तों वजह तो देख के आओ कि उस पर ये तकलीफ आई क्यों है, तो पता चलता है वो इसलिए आई है कि वो सूद खाता है, या वो बेनमाजी है, या वो शराब पीता है, यानी उसके उस गुना शराब पीने पे वो तकलीफ आई हुई थी, जिसकी दुआ इसका दोस्त बैठा हरम में इसके लिए कर रहा है। अल्लाह कहते इसको तो मैं सवाब दे दूंगा दुआ करने के लिए, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने इस गुना से माफी नहीं मांगता। जिस तरह उजर दूर ना करें, जब तक हम कोई बीमारी की वजह ना दूर करें, बीमारी नहीं जाती ना, डॉक्टर दवा देता रहे कि आपकी शुगर कंट्रोल हो, लेकिन आप रोज मीठा भी खाएं और आप हर वो चीज करें जो शुगर बढ़ाती है, तो डॉक्टर की दवा आपको फायदा देगी? लोगों की दुआएं आपको मुझे सिर्फ उस वक्त फायदा देंगी जब हम उस तकलीफ के आने का गुनाह पहचानेंगे। सिंपल सी बात है, जब तक हम खुद अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, दूसरों की नहीं लगेगी, ये दूसरी वजह। हम खुद यकीन के साथ, तड़प के साथ, इल्हाक के साथ अल्लाह से मांगेंगे ना, तो अल्लाह दूसरों की दुआएं भी हमें लगाएगा। और बाज लोग कहते हैं, अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, कुछ लोग हैं जो मुझसे दुआ मांगने से तकबर करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं किसी से मांगते, हम अल्लाह से भी नहीं मांगेंगे, यानी एक अंदर की बड़ाई भी होती है। अच्छा तुम मांगो मैं नहीं मांगती, क्यों? क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा, यानी जैसे लोगों से मांगने को लोग थोड़ा सा डिग्रेडेड होना कहते हैं ना, कुछ लोग इतने अंदर से बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह से भी कोई नहीं मांगना हमने, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उनके हाल पे छोड़ देता है। एक और इसमें एक दिलचस्प चीज देखिए, कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे सूरत जुमर में भी और शायद हामिम सजदा, यानी दो तीन सूरतों में ये 24-25वें पारे के करीब अल्लाह ताला ने कहा है अर्श को उठाने वाले फरिश्ते मोमिनों के हक में दुआ करते हैं। फिर एक जगह आता है कि कुछ फरिश्ते आसमानों पर जो जो दुआएं अल्लाह से क्या करते हैं कि अल्लाह वो लोग जो तुझसे बख्शिश मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, तू उनके गुनाहों को माफ कर, उनके बच्चों को जन्नत दे, ये दे। अब वो फरिश्ते सारा वक्त दुआएं कर रहे हैं, अब उनकी दुआएं किसको लगेंगी? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर रिस्क हराम है। जिस बंदे के रिस्क में हराम शामिल होगा, नंबर एक फरिश्तों की दुआओं से वो निकल गया, नंबर दो नेक लोगों की दुआओं से वो निकल गया। आप देखिए कभी आपने हरम की दुआ सुनी हो, रमजान की, तरावियों की, इमाम साहब रो रो के कहेंगे ना अल्लाह उम्मते मुस्लिमा पे रहम कर, हो रहा? अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को माशी तौर पे मजबूत कर दे, क्या सारे हेल्दी हो गए, सेहतमंद हो गए, बीमारियां दूर होगी? क्यों नहीं हो रहे? जब वो इमाम साहब सारों के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सॉर्ट आउट करवाता है फरिश्तों से। अच्छा, इनको इसमें ऐसा नहीं डालना क्योंकि ये इनके पेट में हराम है। बेनमाजी, हदीस में आता है बेनमाजी को दूसरों की दुआओं का हिस्सा नहीं लगता। यही तो आजकल हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रमजान के नाम से जितनी एक्स्ट्रा नेकियां करेंगे, पता नहीं ये नेकियां हमारी कबूल होनी है या बीच में से वो माइनस ही होती जाएंगी। जैसे आप खाना खाते हैं ना, बहुत कुछ, हम बड़े खुश हैं हमने क्या कुछ खा लिया, प्रोटीन भी ले ली, कैल्शियम भी ले ली, कार्बोहाइड्रेट लिया, अंदर जाके आपको पता है ये सारी चीजें पहले एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होती हैं, एक ठंडा खाया तो एक गर्म खाया, दोनों जाया। और बाज लोग आपको पता है कि कुछ बड़े हमारे जो थे कुछ चीजें दूसरी के साथ नहीं खाते थे, कहते थे दोनों का असर खत्म हो जाता है। जिस तरह हम नेकियां भी सारी कर रहे हैं और गुनाह भी बहुत सारे कर रहे हैं, खलत व अमलन सालेहन व आखरा सैया, यही हाल हमारा इस मामले में भी है। अच्छे काम भी हम बहुत करते हैं लेकिन बुरे काम भी नहीं छोड़ते, तो एंड ऑफ द डे क्या निकलेगा? माइनस प्लस करेंगे तो एंड पे जो आखिर में कुछ बचेगा वही रह जाएगा।